SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au. तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरप्रीत सिंह जी. हरप्रीत सिंह जी कई तरह से सामुदायिक सेवा से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से सामुदायिक सेवा में रुझान भी रखते हैं, लेकिन आज की जो चर्चा है उसका मौजू रहेगा वॉइस रेफरेंडम. वॉइस रेफरेंडम से संबंधित मेलबर्न के गुरुद्वारा नानक साहिब में अभी एक इवेंट हुआ था, जहां पर कई सांसदों ने भी शिरकत की और चर्चा हुई कि क्यों इस जनमत में वोट देना जरूरी है, मतदान करना जरूरी है. तो क्या कुछ हुआ उस रोज, आज समझेंगे हरप्रीत जी से. हरप्रीत जी, SBS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
धन्यवाद वृषाली जी. SBS सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरी प्यार भरी नमस्कार. बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेके आज SBS हिंदी जुड़ा है जी, जिसमें बात कर रहे हैं वॉइस रेफरेंडम की. सबसे पहले ये समझें कि ये रेफरेंडम क्या है. ऑफिसर गुरुद्वारा में मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए और उन्होंने सपोर्ट किया इस इवेंट को. 2 कीनोट स्पीकर से, एक शीना वॉट जो एमपी हैं, पहली एबोरिजिनल फीमेल एमपी विक्टोरियन पार्लियामेंट में वो आई थी, और साथ में प्रोफेसर एंड्रयू गनस्टोन जो फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में एसोसिएट डिप्टी वाइस चांसलर हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए. पूरी कम्युनिटी में अगर देखा जाए तो वॉइस रेफरेंडम के बारे में अवेयरनेस जो है बहुत ही कम है. मैं डेली 15-20 लोगों से बात करता हूँ और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि सिर्फ 1 या 2 लोगों ने वॉइस रेफरेंडम के बारे में सुना है. तो जो जो कीनोट स्पीकर थे उन्होंने बात की कि ये रेफरेंडम क्या है, इसकी महत्वता क्या है. अब देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1901 में बना था उसमें एबोरिजिनल्स का जिक्र ही नहीं किया जाता. 1967 तक ऑस्ट्रेलियन सेटअप में एबोरिजिनल्स की मतगणना की नहीं जाती थी. इस बारी जो रेफरेंडम हो रहा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चेंज लाने के बारे में प्रपोजल रखा जा रहा है. वो चेंज ये है कि आप एबोरिजिनल्स को कॉन्स्टिट्यूशन में रेकोगनाइज करते हैं कि नहीं, और अगर ये रेफरेंडम अप्रूव हो जाता है, माना जाता है, तो उससे ये होगा कि एक एबोरिजिनल्स का एक अलग एडवाइजरी ग्रुप बनेगा जो सरकार को एबोरिजिनल्स से रिलेटेड कोई भी मसले हैं, मुद्दे हैं, उन पे जो पॉलिसी मेकिंग के लिए सजेशन दे सकता है वो एडवाइजरी ग्रुप. तो ये रेफरेंडम में सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि आप एग्री करते हैं इस प्रस्तावित चेंज के लिए कि नहीं. लोगों को ये रेफरेंडम के बारे में पता नहीं है, तो जो हमारे अतिथि आए थे शनिवार को, उन्होंने ये समझाया कि ये रेफरेंडम एबोरिजिनल्स को एक्नॉलेज कर रहा है, रेकोगनाइज कर रहा है, और उनको एक मौका दे रहा है कि वो अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें योगदान दे सके.
तो इस जो कार्यक्रम आपने गुरुद्वारा साहिब में किया उसमें कितने लोगों ने शिरकत की?
इस कार्यक्रम में तकरीबन 85 से 90 लोगों ने अटेंडेंस भरी. उन्होंने एक दूसरे से विचार विमर्श किया, क्वेश्चंस पूछे. एक एमपी शीना वॉट जी ने और प्रोफेसर एंड्रयू गनस्टन ने रेफरेंडम के सभी विषयों पर चर्चा की. कम्युनिटी को ये समझाया कि ये रेफरेंडम की बहुत ज़रूरत है, बट उसके बाद ये भी समझाया कि अगर आप रेफरेंडम में वोटिंग करने जाते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा येस और नो. अगर आप येस का जवाब देने के टाइम सिर्फ वाई लिख देते हैं और पूरा येस नहीं लिखते तो आपकी वोट इनवैलिड हो जाती है. दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने ये समझाया कि दूसरी कंट्रीज ने, जैसे न्यूजीलैंड ने, वहाँ के जो एबोरिजिनल थे या माओरीज थे उनको अपनी इकोनॉमी में, डिसीजन मेकिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन में रेकोगनाइज किया है, और उसका उसका आप असर पूरे न्यूजीलैंड में देखते हैं. एबोरिजिनल्स की, वहाँ के माओरीज के जो लाइफस्टाइल है काफ़ी बेटर है, बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक एबोरिजिनल इंसान की है कंपेयर टू एक एवरेज ऑस्ट्रेलियन, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, एजुकेशन कम है, इनकम कम है, हेल्थ पुअर है। तो ये सारे रेफरेंडम का मेन पर्पस है कि जो जो सरकार प्रोग्राम और पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेगी एबोरिजिनल्स को उन पॉलिसीज में शामिल किया जाएगा और उनसे डिस्कस किया जाएगा कि ये पॉलिसी उनके लिए कैसे इंप्लीमेंट की जा सकती है।
जी, तो मैं आगे यही समझना चाह रही थी कि जो ये 85 से 90 लोगों ने शिरकत की, इनका इनकी जो प्रतिक्रिया थी वो कैसी रही?
देखिए अभी सभी लोग एक लर्निंग स्टेज पर हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, काफी र्यूमर भी फैल रहे हैं इधर उधर रेफरेंडम के अगेंस्ट। तो कई लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि हाँ भाई रेफरेंडम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा हमसे। कुछ लोगों ने ये पूछा क्वेश्चन कि हम ये ठीक लैंग्वेज में जाके कैसे समझा सकते हैं अपनी कम्युनिटीज को। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या रिसोर्सेज हैं हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, बाकी लैंग्वेजेस में, ताकि हम लोगों को समझा सकें। तो हमने वो सारे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए, उनके उनके लिंक्स भी प्रोवाइड किए जहाँ से कम्युनिटी ये रिसोर्सेज को डाउनलोड कर सकती है। मोस्टली ये देखा गया है कि उन 85 से 90 लोगों में मेरे ख्याल से तकरीबन 20 लोग ही ऐसे थे जो इस रेफरेंडम के बारे में अवेयर थे या इस रेफरेंडम की इंट्री केसेस को समझते थे। एक एक सज्जन ने ये क्वेश्चन पूछा कि रेफरेंडम जीतेगा या हारेगा कैसे पता चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूल है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि अगर ऐसा रेफरेंडम अगर वोटिंग के लिए जाता है तो हमारी 6 स्टेट्स में से 4 स्टेट्स को में वो रेफरेंडम जीतना चाहिए, और उसके बियॉन्ड हमारी टोटल जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है जो वोट कर सकती है वो इस रेफरेंडम में 50% लोगों को से ज्यादा इस रेफरेंडम के फेवर में वोट करेंगे तभी ये रेफरेंडम थ्रू होगा। वोटिंग जैसे हमारे स्टेट इलेक्शन में, फेडरल इलेक्शन में मैंडेटरी होती है, अगर हम वोट ना करें तो हमें एक इंफ्रिंजमेंट नोटिस आता है, उसी तरह रेफरेंडम में वोटिंग भी हमारे लिए मैंडेटरी है।
जी, तो यानी मतदान के जो नियम हैं वो आम मतदान जैसे ही हैं, लेकिन एक बार कार्यक्रम की ओर वापस लौटते हैं हरप्रीत जी, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह के सवाल कार्यक्रम में शिरकत करने वाले ऑडियंस कह सकते हैं, श्रोता कह सकते हैं, दर्शक कह सकते हैं, उन्होंने जैसे सवाल पूछे, उसके बाद सांसदों की जो प्रतिक्रिया थी वो क्या रही?
सांसदों ने तो बेसिकली यही कम्युनिटी को बताया है कि ये रेफरेंडम की सिग्निफिकेंस क्या है, ओबरिजिनल से क्या क्या अफवाहें फैल रही हैं। एक अफवाह ये फैल रही है कि अगर ये रेफरेंडम अप्रूव हो जाता है तो हमारे को जिस लैंड पे हम रहते हैं उस पे रहने के लिए एक लैंड टैक्स देना पड़ेगा या किराया देना पड़ेगा। तो सांसद ने ये समझाने की कोशिश की कि ऐसा सोचना गलत है, रेफरेंडम में ऐसा कुछ नहीं है, एक एडवाइजरी कमेटी फॉर्म हो रही है जो एबोरिजिनल्स की मदद करेगी और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में योगदान देगी, कि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, जो हमने सॉरी फील किया 2007 में मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में, उस सॉरी को हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट करें। तो क्वेश्चंस कुछ मिले जुले थे, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस और ज्यादा ज्यादा विचार ये थे कि हम हर कम्युनिटी मेंबर को जाकर अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में रेफरेंडम की सही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि ताकि हर वोटर सोच समझकर रेफरेंडम में वोट करे।
जी हरप्रीत जी, आज आप SBS हिंदी से जुड़े, उसके लिए बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वैशाली जी।